दिन भर तारीख 2 फरवरी दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन बातचीत को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की सबसे खराब बातचीत बताया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल ने कहा वो टिप्पणी नहीं करेंगे।
I've seen that report and I'm not going to comment on the conversation other than to say that in the course
बीमारी के चलते बस्तर के आईजी पुलिस कल्लूरी का छुट्टी पर जाना एक बार फिर से विवादों में।
आईजी कल्लूरी मानवाधिकार आयोग की पेशी में उपस्थित होने से लगातार बचते रहे हैं। पिछले बार भी वो उपस्थित नहीं हुए और इस बार भी वो पेशी में नहीं जाना चाहते और यही कारण है लंबी छुट्टी पर जाना।
राजनीतिक दलों को मिलने वाले कैश चंदे की घटी रकम पर छिड़ी है बहस। चिट्ठियां भी होंगी लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रवासी शरणार्थियों की अदला बदली के समझौते को बेवकूफी भरा बताया है। ट्रंप की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मेलकम टर्नबुल के साथ फोन पर बातचीत हुई थी। समझा जाता है कि इस दौरान टर्नबुल ने ट्रंप से इस बात का आश्वासन मांगा कि वो ओबामा प्रशासन के दौरान हुए समझौते पर अमल करेंगे। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप ने इसे अमरीका के मित्र देशों के प्रमुखों से हुई अब तक की सबसे खराब बातचीत बताया है। समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया के कैंपों में रहने वाले 1200 से ज्यादा लोगों को अमरीका भेजा जाना है। फ्रांस से मिली रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्रांसवा फियो के खिलाफ जांच कर रहे अधिकारियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। उन पर अपनी पत्नी को संसदीय सहायक के तौर पर बड़ा वेतन देने का आरोप है। अधिकारी फियो के सीनेटर रहते वक्त उनके बच्चों को $80,000 से ज्यादा भुगतान की जांच भी कर सकते हैं। फियो का कहना है कि उन्हें यह भुगतान वकील के तौर पर किया गया था लेकिन उस वक्त उनके बच्चों के पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। आरोप के बाद फियो पर उम्मीदवारी छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। यूरोपियन संघ के प्रमुख डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि हालिया दिनों में पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम उल्लंघन के बढ़ते मामले क्रूरता के नए स्तर को सामने लाते हैं। टस्क ने कहा कि इस क्षेत्र में रूस के आक्रामक रुख की वजह से जो चुनौतियां सामने आई हैं इससे उसकी भी जानकारी होती है। सरकार के नियंत्रण वाले अवदीयीवका शहर के करीब 5 दिन से संघर्ष जारी है। टस्क ने ब्रसेल्स में कहा, हम एक बार फिर देख रहे हैं कि हिंसा में तेजी से इजाफा हुआ है। अवदीयीवका क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। संघर्ष पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और संघर्ष विराम का सम्मान होना चाहिए। रूस को अपने समर्थन वाले अलगाववादियों को रोकने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। वहां से हथियार हटाए जाने की जरूरत है। ये थे डोनाल्ड टस्क के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के खास मामलों में राहत देने के लिए कानून बनाकर सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी संकट खड़ा कर रही है। योहानिस ने कहा कि वो इसे संवैधानिक कोर्ट में चुनौती देंगे। इस आदेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जारी हैं और एक मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इस आदेश के मुताबिक अगर सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार से $48,000 से कम लाभ हुआ तो वो जेल नहीं जाएंगे। नाबालिग आदिवासी लड़कियों को देह व्यापार में लगाने और उनके साथ दुष्कर्म के एक मामले में फैसले के लिए छत्तीसगढ़ की एक अदालत का कामकाज रात भर चला। फैसले के बाद सुबह दोषियों को जेल भेजा गया। प्रक्रिया पूरी होने तक जज समेत कोर्ट के सभी कर्मचारी और पुलिस के जवान अदालत में ही रुके रहे। रायपुर से पूरा ब्यौरा बता रहे हैं आलोक पुतुल।
जून 2015 में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पुलिस ने नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने और उनसे देह व्यापार कराने वाले एक गिरोह को पकड़ा था और इनके कब्जे से 2 नाबालिग लड़कियों को भी छुड़ाया गया था। कोरबा की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। दोपहर में शुरू हुई अदालती कार्रवाई देर रात चलती रही और फैसला आते तक सुबह के 4 बज गए। अदालत ने 212 पन्नों में फैसला सुनाया जिसमें 7 आरोपियों को आजीवन कारावास और 2 आरोपियों को 14 साल और 10 साल की सजा सुनाई गई है।
ये थे आलोक पुतुल। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापान के फुकुशिमा परमाणु केंद्र पर काम करने के दौरान एक व्यक्ति को कथित तौर पर बीमारी होने के मामले में टोक्यो की एक कोर्ट सुनवाई कर रही है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत को अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम विदेशी नेताओं के साथ हुई बातचीत में सबसे खराब बातचीत बताया है। ये बातचीत शरणार्थियों को अमरीका में फिर बसाने को लेकर हुई थी। इस फोन कॉल में ट्रंप ने शरणार्थियों की बस्ती समझौते पर सवाल उठाया। ट्रंप और टर्नबुल के बीच बातचीत शनिवार को हुई थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने वरिष्ठ अमरीकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि बातचीत एक घंटे तक चलनी थी, लेकिन ट्रंप ने उसे 25 मिनट में ही निपटा दिया। ट्रंप ने बाद में एक ट्वीट किया और कहा कि इस बेवकूफाना समझौते की वो समीक्षा करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री टर्नबुल ने बाद में कहा कि उन्हें निराशा हुई है कि इस फोन कॉल के विवरण सार्वजनिक हुए हैं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों के सार के साथ है विनीत खरे।
ऑस्ट्रेलिया में शरण मांग रहे 1250 लोगों को अमरीका में बसाए जाने को लेकर समझौते की पहल ओबामा प्रशासन में हुई थी। बाद में किए एक ट्वीट में ट्रंप ने लिखा, वो इस बेवकूफी भरे समझौते का अध्ययन कर रहे हैं। टर्नबुल ने कहा कि ट्रंप ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बातचीत जारी रहेगी। सिडनी रेडियो स्टेशन से टर्नबुल ने ट्रंप की ओर से फोन रखे जाने की खबरों को गलत बताया।
I've seen that report and I'm not going to comment on the conversation other than to say that
मैंने रिपोर्टें देखी हैं, लेकिन मैं इस बातचीत पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बातचीत के दौरान, जैसा कि राष्ट्रपति के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रपति ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो इस समझौते का आदर करेंगे जो हमने ओबामा प्रशासन के साथ किया था। ये थे टर्नबुल के शब्द। पिछले शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए थे जो 7 मुस्लिम बहुल देशों के शरणार्थियों और लोगों के अमरीका आने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाता है। इसके बाद से ही ऑस्ट्रेलिया समझौते को आगे बढ़ाने की पुष्टि चाहता है। प्रवासियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के एक दिन बाद सोमवार को ने कहा था कि उन्होंने ट्रंप से बातचीत कर समझौते को जारी रखने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। बुधवार को अमरीकी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने भी पुष्टि की कि ट्रंप समझौते को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की खबर देने के कुछ देर बाद ही व्हाइट हाउस के सूत्रों ने बताया कि समझौता अभी भी विचाराधीन है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक टर्नबुल को किए टेलीफोन को ट्रंप ने अब तक की सबसे खराब टेलीफोन कॉल बताया। अखबार के मुताबिक राष्ट्रपति ने कहा, टर्नबुल बोस्टन में अगला धमाका करने वालों को अमेरिका भेजने के लिए उत्सुक दिख रहे थे। राष्ट्रपति ने 25 मिनट बाद अचानक ही टेलीफोन कॉल काट दी। अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा, मैं इन लोगों को नहीं चाहता हूं। ट्रंप ने बाद में ट्विटर पर लिखा, ओबामा प्रशासन ऑस्ट्रेलिया से हजारों अवैध प्रवासियों को लेने के लिए सहमत था, क्यों? मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ऑस्ट्रेलिया की शरणार्थियों पर नीति को लेकर आलोचना करते रहे हैं। पिछले साल नवंबर में जब इस समझौते पर बातचीत शुरू हुई तो इस बात की सहमति बनी थी कि अमरीकी अधिकारी शरणार्थियों का आकलन कर तय करेंगे कि किसे अमरीका में बसाया जाएगा। समझौते को संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के जरिए लागू किया जाना है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ हुई टेलीफोन बातचीत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की सबसे खराब बातचीत बताया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टर्नबुल ने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और यहीं पर हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि दिनभर कार्यक्रम की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 4 फरवरी से बदल रही हैं, जिनका विस्तार से थोड़ी देर बाद मैं जिक्र करूंगा। कार्यक्रम में अब भारत की खबरों का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी का छुट्टी पर जाना एक बार फिर से विवादों में है। आईजी कल्लूरी ऐसे समय में अवकाश पर गए हैं जब बस्तर में सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया के घर पर हुए हमले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। दूसरी ओर बस्तर पुलिस मानवाधिकार आयोग के भी निशाने पर है। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बस्तर में सुरक्षा बलों पर 16 आदिवासी महिलाओं के यौन शोषण के मामले में जब पिछले साल नवंबर में बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी को तलब किया, तब आईजी कल्लूरी अपनी बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर चले गए थे। महीने भर बाद दिसंबर में उनकी वापसी हुई। इस बीच मानवाधिकार आयोग ने फिर से उन्हें तलब किया, लेकिन उन्होंने फिर सफाई दी कि वे बीमार हैं। दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया के घर पर हुए हमले के मामले में भी बस्तर पुलिस की आलोचना हुई। इधर एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी फर्जी मुठभेड़ के एक मामले में बस्तर के आईजी को नोटिस भेजी और बस्तर आईजी एक बार फिर छुट्टी पर चले गए हैं। आईजी कल्लूरी का कहना है कि वे बीमार हैं, इसलिए इलाज के लिए छुट्टी पर गए हैं। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि आईजी कल्लूरी अपनी आलोचना से घबरा गए हैं। छत्तीसगढ़ में सामाजिक संगठनों के समूह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला कहते हैं,
आईजी कल्लूरी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पेशी में उपस्थित होने से लगातार बचते रहे हैं। पिछले बार भी वो उपस्थित नहीं हुए और इस बार भी वो पेशी में नहीं जाना चाहते और यही कारण है कि लंबी छुट्टी पर जाना। ये साफ तौर पे स्पष्ट करता है कि उनका संवैधानिक संस्थाओं में बहुत ज्यादा उनका विश्वास नहीं है और वो इसीलिए जाना नहीं चाहते।
दिलचस्प ये है कि बस्तर में आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी की छुट्टी के बीच राज्य सरकार ने बस्तर में डीआईजी का नया पद बनाकर आईपीएस सुंदर राज पी की पदस्थापना भी कर दी है, लेकिन आईजी का पद खाली रखा गया है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का कहना है कि सरकार शिवराम प्रसाद कल्लूरी पर लगे गंभीर आरोपों के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। सिंहदेव कहते हैं,
पुलिस फोर्स में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो काबिल है, एकमात्र एक व्यक्ति है जो काबिल है और बाकी सब नाकाबिल है। निकम्मा शब्द खराब लगता है सुनने में, क्या बाकी सबके सब काम करने लायक नहीं है।
लेकिन विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी का कहना है कि शिवराम प्रसाद कल्लूरी माओवादियों से लड़ने में सक्षम हैं, इसलिए सरकार उन्हें महत्व देती है।
डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार लाचार नहीं, मजबूत सरकार है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमेशा मजबूत फैसले लिए। ये बात करेंगे कि कल्लूरी के सामने हम लोग लाचार हैं, कल्लूरी को इसलिए बस्तर भेजा गया है ताकि बस्तर में नक्सल समस्या का समाधान हो।
सामाजिक संगठनों के विरोध, मानवाधिकार आयोग और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की नोटिस के बीच शिवराम प्रसाद कल्लूरी की बीमारी को लेकर दूसरे पुलिस अफसर कुछ भी कहने बताने से बच रहे हैं। लेकिन सरकारी संकेत ये हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो कल्लूरी जल्दी ही बस्तर की कमान फिर से संभालेंगे। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
बीमारी के चलते बस्तर के आईजी पुलिस कल्लूरी का छुट्टी पर जाना एक बार फिर से विवादों में है। रुख केरल का करते हैं। केरल के क्वेटम में कल एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। मेडिकल कॉलेज के एक पूर्व छात्र ने अपने साथ साथ लड़की को एक बाहों में भरा, पेट्रोल डाला और उसे भी अपने साथ साथ जला दिया। दोनों की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से महिलाओं की सुरक्षा पर तो सवाल उठे ही हैं, साथ ही ये सवाल भी है कि पीछा करने या फिर छेड़छाड़ की घटनाओं की शिकायत पर पुलिस आखिरकार गंभीर क्यों नहीं होती। क्या है पूरा प्रकरण, सुनिए बेंगलुरु से हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
ये वाक्या किसी भी लड़की को चौंका सकता है। 26 साल का आदर्श उसी कॉलेज का छात्र था जहां 20 साल की युवती भी अपना फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रही थी। आदर्श ने अपना कोर्स पिछले साल ही खत्म कर दिया था, लेकिन उसको कुछ पेपर पास करने बाकी थे। कल आदर्श कॉलेज पहुंचा और उसने लड़की से क्लास के बाहर आने के लिए कहा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। दो घंटों बाद वो लड़की उससे बचने के लिए लाइब्रेरी चली गई। आदर्श ने उसका पीछा किया, उसको पकड़ा और पेट्रोल फेंक कर गले लगाया। गले लगाने के बाद उसने आग लगा ली। दोनों 65% से भी ज्यादा जल गए थे। कल शाम को कोटायम के अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। एटमानूर के पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर सीजे मार्टिन ने कहा, उनकी कुछ 6 महीनों से जान पहचान थी, लेकिन उस लड़की के इनकार करने के बावजूद वो उसका पीछा करता रहा। ये थे सीजे मार्टिन के शब्द। दरअसल उस लड़की ने पहले ही एलेपी जिले के कायनकुलम पुलिस थाने में आदर्श के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी कि वो उसे परेशान कर रहा है। चिंगोली ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के नियास ने कहा,
लक्ष्मी शी कंप्लेंट द पुलिस स्टेशन बिफोर 1 month कायनकुलम पुलिस स्टेशन।
पुलिस इंस्पेक्टर ने लड़के और आदर्श के माता पिता को थाने बुलवाया और लड़के से उस लड़की को परेशान न करने के लिए कहा। पुलिस ने लिखित रूप में आदर्श का आश्वासन भी लिया। पिछले 1 महीने से कुछ नहीं हुआ और उसने कल कॉलेज जाकर उस पर पेट्रोल फेंक कर उसको आग लगा दिया। ये थे एच नियाज के शब्द। लेकिन क्या यह दर्दनाक कहानी एक लड़के और एक लड़की की है? केरला में लड़कियों का पीछा करने की घटनाएं कितनी होती हैं? हमने यह सवाल महिला संगठन अन्वेषी की अजीता से पूछा।
विमेन आर नॉट दैट वे फीलिंग एनकरेज्ड।
महिलाओं का पीछा करने के वाक्या बहुत है, लेकिन महिलाएं पुलिस को फौरन शिकायत नहीं करती हैं। महिलाएं पुलिस के पास तभी जाती हैं जब वाक्या एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है, और जब वे पुलिस को शिकायत करते हैं तो पुलिस समझौता का रास्ता लेती है। ये थे अजीता के शब्द। लेकिन बेंगलुरु के महिलाओं के अधिकार संगठन विमोचना के डोना फर्नांडिस इसको अलग नजरे से देखते हैं।
आई थिंक इट इज स्टिल स्टॉकिंग एज अ काइंड ऑफ एन ऑफेंस एज ओनली वेरी रीसेंट।
महिलाएं इसलिए नहीं शिकायत दर्ज करती हैं क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है जब तक हिंसा ना हुई हो। ये सिर्फ केरला या कर्नाटका की बात नहीं है बल्कि सारे देश में ये होता है। पुलिस कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है और जब वो कुछ करें तब बताइए। पुलिस ये नहीं समझती है कि महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न भी होता है, सिर्फ शारीरिक उत्पीड़न ही नहीं होता, कानून का मतलब निवारण भी होता है। ये थे डोना फर्नांडिस के शब्द। अजीब बात यह है कि दिल्ली के उस वाकया में और कोटायम के इस वाकया में दोनों महिलाएं फिजियोथेरेपिस्ट बनने जा रही थी। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
तो सवाल यह है कि पीछा करने की घटनाओं या फिर छेड़छाड़ की घटनाओं की शिकायत को पुलिस आखिरकार इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लेती, और केरल के कोट्टयम का ये दिल दहला देने वाला मामला था। जैसा कि आप जानते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल जो आम बजट पेश किया था उसमें राजनीतिक दलों को मिलने वाले कैश चंदे की रकम घटाकर 2,000 रुपये कर दी गई थी। इस घोषणा पर लंबी और बड़ी बहस छिड़ चुकी है। जहां कुछ राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं वहीं कुछ दूसरे राजनीतिक दल इसे समय की बर्बादी बता रहे हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
बुधवार के पहले जो नियम थे उनके मुताबिक राजनीतिक दलों को किसी भी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त हुए 20,000 रुपए से कम का स्रोत बताने की आवश्यकता नहीं थी। 2017 के बजट में अरुण जेटली ने इस रकम को घटाकर 2,000 कर दिया है और इसे राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया है। हाल ही में नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कुछ आंकड़े जारी किए थे जिसके मुताबिक पिछले 11 वर्षों में राजनीतिक दलों को करीब 69% आय अज्ञात स्रोतों से हुई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2004 से लेकर मार्च 2015 तक सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुल आय करीब 11,300 करोड़ रुपए थी, जिसमें से महज 31% आय के स्रोत का ही पता था। वैसे तो रकम घटाने वाले फैसले को वित्त मंत्रालय ने चुनाव आयोग के सुझावों के तहत लिया गया बताया है, लेकिन कई जानकारों को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राजनीति में काले धन के प्रयोग के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले प्रशांत भूषण।
जो कैश में डोनेशन आते हैं उसका सोर्स तो बताना नहीं होता। जैसे आज ये भाजपा या कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमको इस साल 1,000 करोड़ रुपए कैश में मिले 20,000 से कम के डोनेशंस में, तो कल को भी ये कहेंगे कि भाई हमको 1,000 करोड़ रुपए मिले 2,000 से कम के डोनेशंस में। अगर आप उसकी लिमिट और भी कम कर दें, 100 रुपए भी कर दें, तब भी ये लोग कह सकते हैं कि भाई हमारे पास 10 करोड़ लोगों ने 100-100 रुपए दे दिए।
बुधवार को संसद में जब अरुण जेटली ने इस बात की घोषणा की थी तब भाजपा सांसद खुशी में मेज थपथपा रहे थे। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा।
जहाँ तक आलोचकों का ये कहना कि 2000 तक क्यों किया गया है, मैं आलोचकों को याद दिलाऊं कि यह पूरा प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन ने रखा था 2000 तक करने का। जहाँ तक एनोनिमिटी का सवाल है कि नाम पता नहीं चलेगा, देखिए बड़े रकम देने वालों का नाम पता ही चलेगा। पहले बड़े रकम देने वाले लोग घबराते थे कि अगर हम चेक से पार्टी को डायरेक्टली डोनेशन देंगे तो हमारा नाम पता चल जाएगा और हमें इस पर विक्टिमाइज किया जाएगा दूसरे पार्टी द्वारा। तो इसको एक तरह से संशोधित करके नाम जो पता चलने का विषय है वो बैंक तक रखा गया है।
पिछले कई वर्षों में भारत में राजनीतिक दलों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले करोड़ों रुपए के चंदे का खासा विरोध होता रहा है। जानकारों की राय रही है कि इस नियम में तुरंत बदलाव लाने की जरूरत थी जिससे चुनावी खर्चों और राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़े। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने इस तरह की मिसाल पर अपने कार्यकाल में कड़ी टिप्पणियां भी की थी, लेकिन चंदे की रकम घटाने की सरकार की घोषणा से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के प्रमुख अनिल वर्मा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते।
ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स और पेनल्टी, इन तीन मापदंड पर अगर ये जो अनाउंसमेंट FM का है नापे तो तीनों पे फेल होता है। दूसरी बात जो उन्होंने बोली है कि इनकम टैक्स भरना पड़ेगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, वो कोई नई बात नहीं है, वो ऑलरेडी है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस अगर आप देखें।
इधर सरकार के फैसले पर राजनीतिक दलों की राय भी बटी है। जहां CPM नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि कदम से बड़ी पार्टियों की कॉर्पोरेट फंडिंग और काले धन के प्रयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने इस कदम का स्वागत किया। लगता है अज्ञात स्रोतों वाले चंदे की मुहिम अभी बदस्तूर जारी रहेगी। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
कैश चंदे की रकम घटी 2,000 रुपए। कुछ राजनीतिक दल इसका स्वागत कर रहे हैं, कुछ इसे समय की बर्बादी बताते हैं। और अब आपको बताते हैं कि इस रविवार हमारा एक विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे, किस पे होगा ये?
১৯৬২ का भारत चीन युद्ध। चीनी जनमुक्ति सेना के फौजी वांग ची हमलावर बनकर आए, पर फिर कभी अपने मुल्क लौट नहीं पाए।
मैंने सीता इंडिया अंदर लाए, कोई कागजात नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं।
युद्धबंदी के तौर पर जेल काटी, मजबूरन भारत में ही बसना पड़ा, परिवार बसाया, पर जीवन की संध्या में अब चीन लौटना चाहते हैं वांग ची।
बाल बच्चे है, परिवार है, तो उनको देखना पड़ेगा ना।
क्या घर लौट पाना इतना आसान होता है? वांगची का घर। सुनिए भारत में फंसे चीनी फौजी की कहानी मुझसे यानी विनीत खरे से, सिर्फ बीबीसी हिंदी रेडियो पर रविवार 5 फरवरी शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में, और 6 फरवरी सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। वांगची का घर,
ये विशेष कार्यक्रम सुनना मत भूलिएगा। और अब कार्यक्रम में वक्त है आपके पत्रों का, और आज इस कार्यक्रम में राजेश जोशी नहीं है, राजेश प्रदर्शी नहीं है, वंदना नहीं है, सिर्फ आप हैं, हम हैं, और हैं आपके पत्र। कार्यक्रम में आज हम वो पत्र शामिल कर रहे हैं जिन्होंने प्रसारण साफ न सुनाई देने की शिकायत की है, और हमने अपने कार्यक्रमों में आपसे पूछा था कि आपको कहाँ हमारा कार्यक्रम साफ सुनाई नहीं देता। पिछले कई हफ्तों से बहुत सारी चिट्ठियां हमें मिली हैं। मेरे पास ये पहला पत्र है जयनंदन सिंह तरुण का, जो कि बिहार के नवादा ज़िले के एक छोटे से गाँव में रहते हैं। ये कहते हैं कि पटना से लगभग 200 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर इनका घर है। 18 जनवरी को प्रसारण में जो सूचना दी गई थी इनके, उस संदर्भ में इनका कहना कि प्रसारण साफ साफ नहीं सुनाई देता। 1974 से आपके प्रसारण सुनता आ रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं पर भी साफ सुनाई नहीं देता। दूसरी चिट्ठी है जनरल सिंह, सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर हैं, और ये श्रीगंगानगर से लिखते हैं कि मैं पोस्ट मास्टर हूँ जो कि 1971 से बीबीसी का नियमित श्रोता हूँ। कृपया समस्या का समाधान तुरंत करें, और समस्या ये है कि गंगानगर राजस्थान में प्रसारण स्पष्ट सुनाई नहीं देता, चाहे वो सुबह का कार्यक्रम हो चाहे वो शाम का कार्यक्रम हो। इसी तरह एक और नीले रंग का पत्र है छीतर लाल चौहान का, जो कि झोपड़ियाँ बूंदी राजस्थान से इन्होंने हमें लिखा है, और ये कहते हैं कि राजस्थान के बूंदी ज़िले के पाटन तहसील के झोपड़ियाँ में रहता हूँ। प्रसारण 7:30 बजे का और अन्य फ्रिक्वेंसियों पर यह काफ़ी दबा रहता है। अब सुनने वाले सिर्फ 5% ही रह गए हैं। यदि इनमें सुधार नहीं हुआ तो शायद ये संख्या और भी कम हो सकती है। एक और चिट्ठी है, ये सारी आज हाथ की चिट्ठियां हैं, हनीफ खां की, ग्राम पोस्ट सीकर, सीकरी ज़िला भरतपुर राजस्थान की। ये कहते हैं कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस कभी साफ सुनाई नहीं देता, कभी कभी तो 5 से लेकर 10 मिनट तक आवाज़ हमें छोड़ छोड़ के जाती है, कड़कड़ की आवाज़ होती रहती है। तो आप सबकी जो शिकायतें थी उनको सुना गया, और इन शिकायतों को देखते हुए कि आपको हमारे प्रसारण साफ कार्यक्रम सुनाई दे, हमने दिन भर की फ्रीक्वेंसीज में बदलाव किया है। 4 फरवरी से दिन भर कार्यक्रम शॉर्टवेव 5,885, 7,600, 9,740 किलोहर्ट्ज़ और 11,995 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन सकते हैं। तो इस बार फ्रीक्वेंसी बदलिए। फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से बता देता हूँ, 5,885, 7,600, 9,740 और 11,995 किलोहर्ट्ज़ पर आप दिनभर कार्यक्रम सुन सकते हैं। और आज ही हमारे दिल्ली दफ्तर में एक बहुत पुराने श्रोता भी आए थे, उनसे मैंने बात की।
मेरा पूरा नाम प्रफुल्ल चंद्रवानी है और मैं इस वक्त 76 वर्ष का हूँ,
और बीबीसी हिंदी सेवा भी 75 साल की हो गई है।
और जी हाँ, जब कभी आप इस चीज़ को बताते हैं तो मुझे लगता है यार मुझसे तो 1 साल ही तो बड़ा हूँ इनसे, तो इसीलिए मैं बहुत ही, और आई एम एन एविड, बहुत ही सुनने का मेरे शुरू से ये रहा। इसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि आपके कान लगे हुए हैं, आप अपना काम कर रहे हैं।
लेकिन कभी आपकी चिट्ठी हमने नहीं पढ़ी।
जी मैंने आज तक कभी चिट्ठी भी नहीं लिखा, ना कभी किसी प्रकार का संपर्क।
और ये एक बहुत ही सुखद संयोग है कि आप दिल्ली दफ्तर में आए और आपने दिल्ली दफ्तर में हम लोगों से मुलाकात की।
और यह है कि मेरे ये तमन्ना थी कि मैं ज़रूर जाऊँगा, इस वक्त तो मैं अपने किसी काम से आया था, ये मेरा सौभाग्य है।
कितने सालों से बीबीसी सुन रहे हैं?
मैं समझता हूँ कि 1959 से। मेडिकल कॉलेज में था, उस वक्त घर घर में रेडियो एक सरकार का कार्यक्रम चलता था कि हर घर में रेडियो हो, तो हमने बिजली का रेडियो खरीदा 125 रुपए में। तब से मैं समझता हूँ कि मेरी आदत है। और जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने लगा तो डिस्पेंसरी में रखा रहता था, और जब मैं मरीज देखता था तो मेरे जो पेशेंट है वो भी रेडियो सुना।
तो पेशे से आप डॉक्टर हैं?
जी हाँ, पेशे से मैं डॉक्टर, आई एम MBBS
MBBS डॉक्टर हैं। लेकिन अब अभी प्रैक्टिस करते हैं?
जी नहीं, अभी नहीं करता हूँ, ओनली जब कोई मुझे बुलाता है। हाँ। तो मैं जाके फ्री में देखता हूँ उनको।
ये मेरा क्या बात है। एक सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे। आजकल हमारे तमाम श्रोता ये कह रहे हैं कि उनको BBC के जो प्रसारण हैं वो साफ नहीं सुनाई दे रहे।
ये बात सही है, उसके लिए मैंने दो रेडियो रखे हैं, और जो बिजली का रेडियो है वो सही तरह पकड़ लेता है, जो ट्रांजिस्टर उसमें।
रायपुर में आपको रेडियो सही सुनाई दे रहा है?
भिलाई में रहता हूँ मैं।
अच्छा,
वहाँ पे बिल्कुल साफ सुनाई देता,
मतलब ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं है?
कोई दिक्कत नहीं है।
ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, और हमारे तमाम श्रोता भी कहते रहते हैं कि भाई हमारे प्रसारण उनको साफ नहीं सुनाई देते हैं, और इसके लिए हमने कुछ फ्रीक्वेंसीज में भी बदलाव किया है, जिसको कि हम अपने श्रोताओं को बता रहे हैं।
जरूर
जी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा।
आपसे भी मिलकर मुझे बहुत बहुत आंतरिक खुशी हुई।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक हमारे श्रोता दिल्ली दफ्तर में आए थे, स्टूडियो में आए थे, और मैंने उनसे बात की थी। कार्यक्रम में अब बारी है खेल समाचारों की। राखी शर्मा स्टूडियो मौजूद हैं। क्या है आज कुछ?
आज भारतीय टीम के जो क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, उनके साथ शुरुआत करते हैं। कप्तान विराट कोहली भले ही ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स से पिछड़कर तीसरे स्थान पर हों वनडे की जो बल्लेबाजी रैंकिंग है, लेकिन T20 में फिलहाल उनकी चुनौती, उनकी जो ये स्थान है उसे चुनौती मिलती नहीं नजर आ रही। ऐसा तब है जब इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन औसत ही रहा। विराट ने बतौर ओपनर पहले T20 में 20, दूसरे में 21 और तीसरे T20 में केवल 2 रन ही बनाए। इस प्रदर्शन के बावजूद ICC की T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में उनका जो पहला स्थान है वो बरकरार है उस पर। हालांकि उन्हें पत्रकारों से एक शिकायत है कि उनके T20 में ओपन करने के फैसले पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं।
IPL में मैं खेला था, ओपनिंग में मैंने 400 बनाए थे, तो तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी मैच में रन नहीं बने तो वो प्रॉब्लम हो गई। दैट टाइम पीपल वर सेइंग ओ सच अ रेवलेशन, ही इज ओपन द इनिंग्स, नाउ आफ्टर 2 इनिंग्स दूसरों पे भी फोकस करिए। मैं सब कुछ कर लूंगा तो बाकी क्या करेंगे, दूसरों को भी चांस दीजिए। इट्स अ ग्रेट सीरीज विन फॉर अस, सो आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट, आई एम नॉट वरीड अबाउट माय ओपनिंग स्लॉट एट ऑल। तो टीम के लिए खुश रहिए, अच्छी सीरीज बने, एंजॉय करिए।
और वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच आज इंदौर में खेले गए ब्लाइंड T20 विश्व कप के चौथे राउंड के मैच में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 19.4 ओवर में सभी 10 विकेट खोकर 158 रन पर आउट हो गए, जिसके जवाब में भारत ने 11 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान के लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से केतन पटेल ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए, जबकि बल्लेबाजी में ओपनर सुखराम मांझी ने नाबाद 67 और गणेश मूनकर ने नाबाद 78 रनों की पारी खेली। और वहीं कल से डेविस कप में भारतीय टीम अपने मुकाबले का आगाज करेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो इस मुकाबले में सबकी नजरें भारतीय टेनिस खिलाड़ी लियांडर पेस पर होंगी। पेस भारत से कमजोर न्यूजीलैंड के खिलाफ कल से एशिया ओसनिया ग्रुप डेविस कप मुकाबले में शायद आखिरी बार खेलते नजर आएंगे। पेस के पास ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका भी है। 18 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन 55वें डेविस कप मुकाबले में उतरेंगे, और अगर वो कल अपना डबल्स का मुकाबला जीत लेते हैं तो इटली के निकोला के 42 डेविस कप जीत को पार कर सबसे सफल डबल्स खिलाड़ी बन जाएंगे डेविस कप में।
बहुत बहुत शुक्रिया राखी शर्मा। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रवासी शरणार्थियों की अदला बदली के समझौते को बेवकूफी भरा बताया है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया के कैंपों में रहने वाले 1200 से ज्यादा लोगों को अमेरिका भेजा जाना है। फ्रांस से मिली रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्रांसवा फियों के खिलाफ जांच कर रहे अधिकारियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। यूरोपियन संघ परिषद के प्रमुख डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि हालिया दिनों में पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम उल्लंघन के बढ़ते मामले क्रूरता के नए स्तर को सामने लाते हैं। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को अपनी पूरी टीम के साथ विदा दें और BBCHindi.com पर आते रहें। नमस्कार।